ओम शांति, ओम शांति, एंड ओम शांति। तो आज का टॉपिक तो सभी को पता ही है कि संगम युग मौजों का युग है। कौन कौन सी मौज मनानी है? तो संगम युग में बाबा से मिलन की मौज मनानी है। संगम युग में बाबा से समीपता की मौज मनानी है। संगम युग में बाबा से जो प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है उसकी मौज मनानी है। संगम युग में बाप समान बनने की मौज मनानी है। जनरली बाबा के बच्चे हैप्पी बच्चे होते हैं, मौज में ही रहते हैं। चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा वायरस आकर के अपना प्रकोप दिखाए, चाहे तीसरा विश्व युद्ध क्यों न छिड़ जावे, चाहे सारे विश्व की इकोनॉमी डाउन क्यों न हो जावे, कितनी भी पॉलिटिकल उथल पाथल क्यों न हो, फिर भी बाबा ने हम बच्चों को एक पाठ पक्का कराया है कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। संगम युग में कुछ भी गलत नहीं होता। बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, जो सीन हमारे सामने आ रही है उसमें भी कल्याण ही समाया हुआ है। जब इस बात को पक्का कर लेते हैं तो फिर हमारे आगे कोई प्रकार की दुख शांति नहीं आ सकती। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें या परीक्षाएं जिसको कहो वो हमारे सामने आ जाती है, जिसमें फिर हमें कुछ बातों के पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, परीक्षाएं हर एक के आगे आती है। मुझे याद है दादी प्रकाशमणि हमेशा हम लोगों को कहती थी कि समझो कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हुई हूं, हर ब्राह्मण आत्मा मेरा टीचर है, एग्जाम परीक्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं और मुझे उस परीक्षा में पास होना है। इस लक्ष्य से हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम पास विथ ऑनर बन जाएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी बातों के पर अगर हमने थोड़ा ध्यान रख लिया तो फिर ये संगम युग जो मौजों का युग है उस युग का हम पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ब्राह्मण जीवन में हम अपना स्वमान कभी खो देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूं कि दो बाबा के बच्चे हैं। एक बाबा का बच्चा है बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड है। दूसरा बाबा का बच्चा उतना होशियार नहीं है। या तो कभी कभी ये वाला इससे कंपेयर करेगा अपने आप को कि बाबा ने इस आत्मा में कितनी सारी गुण विशेषताएं भरी है, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं बाबा ने मेरे को क्यों ढूंढा। तो इस प्रकार के कभी कभी संकल्प आते हैं तो फिर हम अपना सुमान खो देते हैं। और ब्राह्मण जीवन में जैसे ही मैंने अपना सुमान खोया तो हम अपसेट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि स्वमान में रहना उसमें बहुत हायर वाइब्रेशंस होते हैं। स्वमान में रहना उसमें बहुत सारी इंस्पिरेशंस, प्रेरणाएं छिपी हुई है। तो किसी भी हालत में हमारा स्वमान कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वमान में कोई प्रश्न नहीं होता, स्वमान में कोई कंपैरिजन नहीं होती, स्वमान में कोई कंप्लेंट्स, कोई शिकायतें नहीं होती, स्वमान में कोई एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं नहीं होती। बस एक ही चीज स्वमान में होता है, वो है एक्सेप्टेंस। जो बातें मेरे सामने आ रही है उसे हम स्वीकार करते जाए। स्वीकार करते करते हम उस स्वमान में स्थित होते जाएंगे। तो स्वमान में स्थित होने के लिए कौन सी बात का हम ध्यान रखें, ताकि मेरा स्वमान ब्राह्मण जीवन में कमती न हो जावे। तो उसके लिए बाबा कभी कभी मुरली में उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था, असुर और देवताओं के बीच एक बहुत बड़ा भगीरथ कार्य दोनों को संपन्न करना था, और वो कार्य था समुद्र मंथन का। दोनों जने साथ आए और इस कार्य को, कार्य का आरंभ किया, और जब बड़ी मेहनत से समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले समुद्र मंथन से क्या निकला, पॉइजन निकला ना, जहर, जो कोई को नहीं चाहिए था, न देवताओं को चाहिए था, न असुरों को चाहिए था। तो फिर क्या किया, वो जो पॉइजन निकला वो भक्ति में बताते शंकर को दे दिया, बट हकीकत में भगवान को दे दिया, भगवान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोबारा मंथन करने का कार्य चालू किया, तब फिर जाकर के समुद्र मंथन से बहुत अच्छी अच्छी चीजें इमर्ज होती गई, या अमृत निकला, नवरत्न निकले, लक्ष्मी निकली, ये सब चीजें सबको चाहिए था। तो यही सेम प्रोसेस हमारे साथ भी होता है, क्योंकि स्वमान में रहने की सिंपल मेथड है ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। तो हम भी जब ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकलता है, अशुद्ध संकल्प आएंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे, यानी पॉइजन ही निकलता है। और कभी कभी बाबा के बच्चे डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये पॉइजन निकला, ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं निकलना चाहिए था, या फिर कई बार तो विचार सागर मंथन करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन उस समय बाबा कहते हैं कि हमें याद दिलाना है कि हमारा ही भक्ति में यादगार है। कौन सा यादगार है, अगर पॉइजन निकला तो बाबा को दे देवे, या विचार सागर मंथन करने का कार्य कंटिन्यू करना है, या तो अंदर से अच्छी अच्छी चीजें डेफिनेटली निकलेगी, या तो हमारे सुमान को बढ़ाने की बेस्ट युक्ति है विचार सागर मंथन करना। जैसे दही को मथते हैं तो क्रीम निकलता है, और वही क्रीम हमारे शरीर को हेल्थी बना देता है, या और पीछे में जो छाछ रह जाती है वो भी काम की चीज होती है, है? गर्मियों में कहते हैं ना सभी छाछ पियो, तो वो भी शरीर को शीतलता देती है। तो ऐसे ही जब विचार सागर मंथन करते हैं ना, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स इमर्ज होती है जो मेरे मन को बहुत शक्तिशाली बनाती है। और बाद में जो ज्ञान बचता है ना, वो ज्ञान भी बहुत मदद करता है हमारी एक एक कर्मेंद्रियों को। ज्ञान की ताकत भी शीतल बना देती है। तभी तो कहते हैं ना कि नॉलेज इज अ लाइट विच गिव्स यू लॉट ऑफ माइट। उसी ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारे जीवन में वो शक्ति ताकत आती है। या तो स्वमान को बनाए रखने के लिए एक तो मुझे अपने जीवन में ये विचार सागर मंथन करने की एक प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। दूसरी बात, कभी कभी हम थोड़ा डाउन फील करते हैं, हैप्पी फील नहीं करते हैं, तो उस समय बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमारे लिए जो अच्छे अच्छे ये गाने बनाए हैं, गीत बनाए हैं, गीतों को सुनते सुनते भी क्या होता है, नशा चढ़ता है। आप सबने अपने जीवन में अनुभव किया ही होगा है? कि जैसे जैसे बाबा के गीत सुनते जाते हैं, गुनगुनाते जाते हैं, सेम टाइम आप देखो कोई बात हमें बॉदर करती है, दुख देती है, वो बातें हम भूल जाते हैं और फिर से हम हैप्पी हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं कि बाबा के वरदानों की स्मृति भी मेरे स्वमान को बढ़ा देगी। अभी तो खैर बाबा पर्सनली तो वरदान नहीं देते हैं, लेकिन शुरू शुरू में याद करो जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, या बाबा पर्सनली एक एक बच्चे को मिलते थे, बाबा से हम वरदान लेते थे, तो वो भगवान के शब्द ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, इट्स वेरी पावरफुल वर्ड्स। तो वो शब्दों में भी ताकत समाई हुई है और वो ताकत हमारी आत्मा को फिर से खुशी में ला देती है। हमारे पास एक भाई आता था तो उसने क्या किया था कि देखो ज्ञान में वो 25 साल से है, या 25 सालों में आप समझ सकते हो हर ओकेशन पर, चाहे दिवाली है, चाहे होली है, चाहे शिवरात्रि है, या हम लोग ब्लेसिंग कार्ड्स देते हैं ना, वरदान देते हैं सबको, तो 25 सालों में उसने ढेर सारे वरदान इकट्ठे किए थे। या फिर मेरे को अपना अनुभव सुनाते हुए वो बताता था कि बहन जी जब भी उसने क्या किया था, सारे वरदानों की अपने कमरे में एग्जीबिशन लगा दी थी, प्रदर्शनी। या फिर वो कहता था कि जब भी मेरे आगे कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, तो कहता था मैं इधर उधर किधर भी नहीं जाता, सीधा अपने कमरे में जाता हूं और जाकर के एक एक वरदानों को मैं पढ़ता हूं। मेरे को आधा घंटा लगता है, लेकिन आधे घंटे के बाद जब मैं अपने कमरे से वापस आता हूं तो कहते मैं बहुत खुश होता हूं, हैप्पी होता हूं। या तो ये बाबा के वरदानों की कमाल है। अभी तो खैर बाबा से पर्सनल वरदान नहीं मिलते, लेकिन हमारी दादियां भी तो बाप समान है ना, उनसे भी जो वरदान मिलते हैं, ब्लेसिंग कार्ड्स मिलते हैं, वो भी बाबा के ही वरदान है। शुरू शुरू में हम लोगों को याद है कि जब हम लोग ज्ञान में आए तो मुझे याद है पहली बार मैं बाबा से मिली थी वो था बाबा का कमरा। आपने पांडव भवन में देखा है ना, अभी तो बहुत बड़ा बना दिया, पहले हाफ साइज का कमरा था, बाबा वहीं आते थे। फिर धीरे धीरे बाबा ने हिस्ट्री हॉल में आना शुरू किया, फिर मेडिटेशन हॉल, फिर ओम शांति भवन बना या उसके बाद डायमंड हॉल बना नीचे या तो ऐसे जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए वैसे वैसे बाबा से मिलने का वो तरीका भी बदलता गया। तो कैसे भी करके मुझे स्वमान में रहना है, स्वमान की सीट से नीचे नहीं उतरना है, तो अपने जीवन में वो खुशियों का सुख का आत्मा अनुभव करेगी। दूसरी बात है, बाबा कहते हैं कि कहावत है ना कि अंतर्मुखी सदा सुखी। अगर मुझे सुख का अनुभव करना है तो बार बार प्रैक्टिस करनी होगी अंतर्मुखी बन करके रहने की। अभी ये लॉकडाउन के समय बाबा ने हम सब बच्चों को कितना अच्छा चांस दिया या हम सब लोग सेवाओं में कितना भागते थे, इधर गए उधर गए कहां कहां दौड़ते रहते थे। बाबा ने सबको बिठा दिया एक जगह पे, अभी एक जगह पर बैठ करके सेवा करो, स्व सेवा करो। तो हम लोग भी 2.5 साल से मधुबन में भी नहीं आए थे, अपने ही देशों में बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे। जैसे ही बॉर्डर खुला, एयरपोर्ट खुला, तो सबसे पहले सीधा मधुबन में आए। पहले साल में 2-2 बार 3-3 बार आना होता था, फिर 2.5 साल में एक भी बार आना नहीं हुआ। तो उस समय मधुबन की वैल्यू का पता चलता है, जब चीजें आसानी से मिलती है ना तब उसकी वैल्यू नहीं पता चलती। ब्राह्मण परिवार क्या है, जब हम साथ है तो उसकी वैल्यू का नहीं पता चलता। जब नहीं होते हैं, कई बार बाबा हम बच्चों को ऐसे ऐसे देशों में भेजते हैं जहां कोई बाबा का बच्चा नहीं होता, कोई ब्राह्मण नहीं होते, तो उस समय फिर याद आता है कि परिवार की वैल्यू क्या होती है, परिवार से हमें कितनी ताकत मिलती है। कई बार ऐसे ऐसे परिवारों के साथ रहना पड़ता है जो ज्ञान में भी नहीं है, खैर वेजिटेरियन होते हैं लेकिन बाबा का तो ज्ञान नहीं होता उनको, तो उनके साथ रह करके फिर बाबा का ज्ञान दे करके उनको फिर बाबा का बच्चा बनाना पड़ता है। एक परिवार में मैं कहां रह रही थी, तो वैसे वो शाकाहारी थे परंतु ये क्या कहते हैं ऑनियन गार्लिक ना, ये लहसुन प्याज बहुत खाते थे, और हम लोग तो कितने सालों से हम लोग तो वो खाते ही नहीं, तो दूर से उसकी वो स्मेल आती थी। और वो परिवार वाले मुझे कहते थे कि बहन जी अगर हमने इसको छोड़ा ना हम मर जाएंगे, रह ही नहीं सकते इसके बिना। और मैं उनको गारंटी देती थी कि नहीं आप नहीं मरोगे। फिर 8 दिन मैंने बिना लहसुन प्याज डाले खाना बनाया, उनके लिए भी खिलाया, या तब उनको पता चला कि बिना उसके भी अच्छा खाना बन सकता है। या तो कहने का मतलब ये है कि जो बाबा ने अभी हमें समय दिया है वो समय हमारे लिए तपस्या का समय है, तो उसमें मुझे अंतर्मुखी बन करके अंदर में रही हुई आत्मा से बातें करनी है। बाहर मुखी में हम बाहर की दुनिया में बाहर के लोगों को देखते हैं, लेकिन जब अंतर्मुखी बनते हैं तो अंदर में रही हुई आत्मा के साथ हम बातें करते हैं, बाबा के साथ बातें करते हैं, और उसमें बड़ा मजा आता है। एक बार क्या हुआ था, एक महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग लिखा हुआ है, उसमें बताते हैं कि क्या हुआ था। वो अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में मारा गया था, खैर हाथी था, तो गुरु द्रोणाचार्य का वो बेटा भी था, या तो गुरु द्रोणाचार्य को जैसे पता चला कि अस्वस्था में मर गया तो इन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तब अस्वस्थामा को पता चला कि मेरे बाप को कपट से मारा, वो बड़ा गुस्से में आ गया। तो उसने गुस्से में आकर के नेक्स्ट डे जब ये वॉर शुरू हुआ तो उस समय उसने एक बहुत पावरफुल वेपन छोड़ दिया, नारायणा वेपन, नारायणा अस्त्र, वो पांडवों की ओर छोड़ दिया। ये अस्त्र की ये विशेषता थी कि वो अपना काम पूरा करके ही वापस लौटेगा, ऐसे नहीं आएगा वापस। तो श्री कृष्ण ने देखा कि ये पावरफुल अस्त्र पांडव आर्मी की तरफ आ रहा है, तो कृष्ण ने क्या बोला सबको? श्री कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग अभी अंतर्मुखी बन जाओ, अपने मन से युद्ध करने का संकल्प भी छोड़ दो, एकदम भगवान को, नारायणा को सरेंडर हो जाओ। तो जैसे श्री कृष्ण ने बोला सारी आर्मी ने वैसे ही किया, या फिर धीरे धीरे वो शस्त्र जैसे नजदीक आता गया ना, वो पावरलेस होता गया, उसकी शक्ति कमती होती गई। एंड बाय द टाइम जब एकदम नजदीक आया तब बिल्कुल पावरलेस हो गया, ऐसे ही वो शस्त्र वापस लौट गया। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास भी ये कोविड कहो, कोरोना कहो, कितना पावरफुल शस्त्र के रूप में आया था ना ये वायरस, या हम लोगों ने क्या किया, अंतर्मुखी बन करके तपस्या आरंभ की, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वायरस पावरलेस हो गया, अभी भी है। तो मैं बता रही थी कि हमारी तपस्या के कारण ये वायरस भी धीरे धीरे पावरलेस होता जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखता में रह करके मुझे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है खुद के साथ और बाबा के साथ। दादी प्रकाशमणि कहती थी ना कि एकांत में बैठ करके 5 केले रोज खाओ। कौन से 5 केले खाएंगे? वो वाले तो नहीं खा सकते रोज रोज, लेकिन ये वाले केले खा सकते हैं। दादी कहती थी कि याद करो कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले बनकर अकेले बाप को अकेले में याद करना है। ये 5 केले तो खा सकते हैं ना, तो ये अंतर्मुखता का अभ्यास करते करते ये केले खाते जाओ, खिलाते जाओ, तो हम इन मौजों के युग का अनुभव कर सकेंगे। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि मुझे ध्यान पे रखनी है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, है सकारात्मक दृष्टिकोण मुझे रखना है अपने जीवन में, क्योंकि बातें तो बहुत आएगी, लेकिन मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि ये बातें, ये परीक्षाएं, ये समस्याएं, ये तूफान मेरे आगे आए हैं किस लिए? मुझे आगे बढ़ाने के लिए। ये परीक्षाएं आई है मुझे जीवन में स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ये परीक्षाएं आई है मुझे अनुभवी मूरत बनाने के लिए। जब हमें वो अनुभव होता है तो उसी प्रकार की समस्याओं से कोई गुजर रहा है तो हम उनको अपने अनुभव के आधार से बताएंगे कि हाँ भाई मेरे आगे भी ये बातें आई थी, ऐसे ऐसे मैंने उसको क्रॉस किया। तो वो अनुभव से जो बातें आती है ना, वो दिल से निकलती है, और दिल से निकलने वाली बातें दिलों को टच करती है। अगर मेरा अनुभव नहीं है तो वो दिमाग से बातें आएगी, और दिमाग से जो बातें मैंने किसी को सुनाई वो तो वो भूल जाएगा, अंदर में नहीं जाएगा। या तो ये मुझे याद दिलाना है कि ये बातें मेरे सामने आई है मुझे अनुभवी मूरत बनाने के लिए, ये बातें मेरे सामने आई है मुझे कोई अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए। कई बार बातें आती है, हम लोग क्या करते हैं, बैठ के कई बार उन बातों का ही चिंतन करते हैं, परंतु उन बातों को सोचना वो कोई सलूशन नहीं है। उस समय मुझे क्या करना है कि जो लेसन मैंने उस परीक्षा से अपने जीवन में पढ़ा उसे मुझे दोहराते रहना है, न कि बातों को, ताकि दोबारा ऐसी बातें आए तो हम पास हो जावे, फेल नहीं होवे। तो ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड, ये कोरोना भी आया जिसमें कई लोगों ने शरीर भी छोड़ा, या लेकिन कुछ अच्छा भी तो सिखा के गया ना। देखो ये स्वच्छता अभियान कितने समय से ये लोग कर रहे थे, लेकिन कोरोना ने कुछ ही समय में सिखा दिया हाइजीन क्या होता है। भारत में कितना मुश्किल था, बता ही नहीं सकते थे, अंदर ही नहीं जाता था, कोरोना ने सिखा दिया, प्रकृति को शुद्ध कर दिया। कितनी बातों का फायदा भी तो हुआ ना। एक बार क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी शूज कंपनी थी, जूते की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो इन्होंने क्या किया, अपने दो सेल्समैन थे उनको अफ्रीका भेजा कि आप अफ्रीका में जाओ जूतों की खूब बिक्री करो। तो ये जो दो सेल्समैन वहां गए ना, उसमें एक सेल्समैन था, ही वॉज अ पॉजिटिव पर्सन, और दूसरा वाला था थोड़ा नेगेटिव, क्रिटिकल था। या तो वो जो नेगेटिव पर्सन था, उसने अफ्रीका में जाकर के देखा कि यहां तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, यहां कैसे बेचेंगे हम लोग, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने अपने बॉस से बात की कि भाई हमें वापस बुला लो, यहां तो संभव ही नहीं है। बल्कि दूसरा सेल्समैन जो पॉजिटिव था, उसने क्या किया, उसने भी देखा कि यहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। या तो हम लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि जूता पहनने से क्या फायदा होता है, हम सिखाएंगे उनको। या तो उसने अपने बॉस को बताया कि यहां ट्रक्स लोड भर भर के जूते भेजो, हम लोग बहुत उसकी बिक्री करेंगे। या तो दो व्यक्ति, पॉजिटिव नेगेटिव, डिफरेंट रिएक्शंस है उनके। या तो यही बात बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जो बात मेरे सामने आ रही है उसमें मेरा फायदा ही फायदा है। एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एक वो प्रिजनर था, कैदी था। या तो ये जो कैदी वहां पर था उसको फांसी की सजा सुनाई गई। या तो फिर वहां के वैज्ञानिकों ने बैठ करके सोचा कि इसको फांसी से लटका के नहीं मारना चाहिए, उसको कोबरा के जहर दे करके इसको मारना चाहिए। तो उसको बुलाया गया एक कमरे में, कैदी को बुलाया गया, फिर उसके सामने वो कोबरा आया, पॉइजनस सांप। या उसने कोबरा को देखा, फिर क्या किया, इस कैदी के आंख पे वो काली पट्टी लगा दी गई। फिर वहां पर जो व्यक्ति था उसने एक सेफ्टी पिन लिया, सेफ्टी पिन लेकर के उसको थोड़ा सा चुभाया, दो बारी। तो इधर इस कैदी ने सोचा कि कोबरा ने मेरे को डंक मारा। जैसे ही उसने वो सोचा तो उसके अंदर से एक प्रकार का हार्मोन क्रिएट हुआ। नेगेटिविटी के कारण वो जो हार्मोन, उसमें सिमिलर काइंड का वो विष पाया गया जो कोबरा के अंदर विष था। तो देखो हमारे संकल्पों में कितनी ताकत है। आज बैठ के पॉजिटिव थॉट्स करते हैं ना, तो एकदम रिलैक्स हैप्पी वाइब्रेशंस वातावरण में वो क्रिएट कर देते हैं। परंतु नेगेटिव विचार जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर बात को मुझे अपने जीवन में एक सकारात्मक भाव से लेना है तो मैं जीवन में हैप्पी रह सकती हूं। चौथी बात बाबा याद दिलाते हैं है कि मौजों का अनुभव करने के लिए पुरानी बातों को, पुरानी स्मृतियों को मुझे बुलाना होगा। कई बार देखो कितनी पुरानी पुरानी बातें होती है, वो डीप रूटेड चली जाती है एकदम सिस्टम में, वो निकलती नहीं है और वही बातें फिर हमें दुखी करती रहती है। इसलिए दादी जानकी कहती थी कि ये जो पास्ट है ना, उसको हम हिंदी में भूत कहते हैं, भूतकाल। तो पुरानी बातें कैसी है, बैठ के भूतों को याद करने वाली बातें हैं। कौन बैठ के भूतों को याद करेगा, दुख का अनुभव होता है ना, तो कोई भूतों को नहीं याद करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी पुरानी बातें हैं तो उसमें मुझे अपने माइंड को एंटरटेन नहीं करना है, हमें अपने मन को वर्तमान में ले आना है और वर्तमान की अच्छी अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना है, उसकी कदर करनी है और उसे एंजॉय करते चले। तभी तो दुनिया में एक बहुत पॉपुलर कहावत है, कहते हैं कि यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री एंड टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेजेंट। गिफ्ट को प्रेजेंट कहते हैं ना, तो ये वर्तमान मेरे लिए एक बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है। अभी हम बाबा के साथ है तो कभी भी हमारा माइंड पास्ट में चला जावे तो उसे हमें वर्तमान में ले आना है। और बाबा के साथ की बातें, ज्ञान की बातें, उसमें अपने मन को ऑक्यूपाई रखना है। या तो फिर वो पुरानी बातें हमें दुखी नहीं करेगी, या हम अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, बहुत दुखी था। वो बुद्धा के पास आता है और बुद्धा को कहता है कि मैं मेरे जीवन में इतना दुखी क्यों हूं, क्या कारण है उसका। तो बुद्धा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई तू अपने जीवन में चैरिटी नहीं करता है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, पुण्य का काम तुम करो तो तुम अपने जीवन में सुखी रहोगे। तब इसने बताया गरीब व्यक्ति ने कि मैं कहां से पुण्य का काम करने जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी तो नहीं है ना। तब बुद्धा ने कहा कि तुम्हारे पास 5 खजाने हैं। सबसे पहला खजाना वो तुम्हारा चेहरा है, हर्षित मुख बन करके हम किसी को भी ग्रीट करते हैं, सामने वाला भी तो खुश हो जाता है ना। कई बार चढ़ा हुआ टेढ़ा फेस होता है, सामने वाला भी बेचारा दुखी हो जाता है देख करके। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये हर्षित चेहरा ये भी हमारा एक खजाना है। दूसरा खजाना है हमारी आंखें। उस आंखों में जब कल्याण का भाव होता है, रहम की दृष्टि होती है, भाई भाई की दृष्टि होती है, अलौकिक दृष्टि होती है तो वो दृष्टि भी आत्माओं को नजदीक ले आती है। तीसरा हमारा खजाना है हमारा मुख है। जब मुख से एनकरेजिंग शब्द बोलते हैं तो किसी भी आत्मा में ताकत आ जाती है, आगे बढ़ जाता है। चौथा खजाना है हमारा दिल है। दिल में कितने सारे इमोशंस भरे हुए हैं है? तो वही दिल से प्यार से हम किसी को बुलाते हैं, किसी को अपनेपन की फीलिंग्स देते हैं, वो व्यक्ति खुश हो जाता है। और पांचवा खजाना है हमारा बॉडी है शरीर। तो शरीर से भी रोज एम रखना है कि मेरे से तीन अच्छे कार्य होते रहे। चलो किसी को बाबा की मुरली सुना दी, ये भी पुण्य का काम है। किसी को कोर्स करा दिया, ये भी पुण्य का काम है। बाबा के घर में मधुबन में आकर के स्थूल सेवाएं करते हैं, ये भी पुण्य का काम है। तो ऐसे रोज न रोज कुछ न कुछ पुण्य का काम होता रहे। तो ये पांच खजाने हमारे पास भी है, तो ये देने का लक्ष्य रखेंगे तो हम अपने जीवन में हैप्पी रहेंगे। चौथी बात, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जीवन में डर आ जाता है, कोई न कोई बात का डर आ जाता है, डरपोक बन जाते हैं। ये कोरोना काल में भी देखा होगा, जिनको कोरोना का डर था ना उसके पास कोरोना चला गया। जिसका आपको डर होगा आप उसकी ओर अपने वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, उसको बुला रहे हैं है? तो वो डेफिनेटली आएगा। या कई बार कईयों को कुत्तों से डर हो लगता है, भागते हैं दूर दूर, कुत्ता उसी के पास ही जाएगा, उसको पता है या वाइब्रेशंस उसको फील होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें भी लक्ष्य रखना है कि फियर को फेथ में बदल देना है। जो भी डर है उसको विश्वास में बदल दे। विश्वास माना खुद के पर मुझे निश्चय चाहिए, बाबा के पर मेरा फुल फेथ, ड्रामा पर मेरा निश्चय, बाबा के ज्ञान में निश्चय, बाबा के परिवार में भी निश्चय। ऐसा जब हम परिवर्तित कर देते हैं फियर को फेथ में, निश्चय में, या तो उससे हम निडर बन जाते हैं। और जब मेरा खुद में विश्वास होता है ना तो उससे हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी अपने में डेवलप कर लेते हैं, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कई आत्माओं में आप देखो बाबा में विश्वास है, खुद में विश्वास नहीं होता। या तो कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। एक बार क्या हुआ, पता नहीं मैं कोई देश में टूर कर रही थी है, तो एक बहन मेरे पास आई, अंग्रेज बहन थी। तो वो आकर के मुझे कहती है कि सिस्टर आप लोग तो सेंटरों पर अकेले रहते हो, अकेले अकेले सब कुछ करते हो, अकेले अकेले घूमते रहते हो है? तो आप लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग लेना चाहिए, तीन कोर्सेस का है, जो विदेशों में काफी सिखाते हैं, यहां भी सिखाते होंगे। तो पहला कोर्स कहते सेल्फ डिफेंसिव कोर्स, कि भाई कोई हमारे पर अटैक करे ना हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसने बताया ये सेल्फ डिफेंसिव कोर्स सीखना चाहिए, फिर कहती है कराटे सीखना चाहिए, और तीसरा उसने मुझे बताया मार्शल आर्ट। कहते ये सारे कोर्सेस आपको करने चाहिए तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। उसने आधा घंटा मेरे को लेक्चर दिया। मैंने बड़ा शांति से धैर्यता से सुन लिया। फिर मैंने उसको प्यार से बोला कि ओके सिस्टर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो मेरे से हो सकेगा मैं करूंगी। या फिर वो चली गई। फिर 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि ये जो बहन मुझे सिखा के गई थी कि ये सारा करना चाहिए, वो जानती थी। या तो वो रात को कहां जा रही थी तो उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। या जब अटैक किया सारे कोर्सेस वो भूल गई, कुछ भी याद नहीं आया है। तो ये बात है कि जब हमारा अपने पर विश्वास कमती हो जाता है तो फिर हमारा आत्मविश्वास चला जाता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारी बातें होती है, डर अंदर ही अंदर बैठ जाता है। बच्चे भी देखो, स्कूल में अच्छी तरह से स्टडी नहीं की है तो एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, डर लगता है ना। डर के मारे वो क्वेश्चन पेपर लेते हैं और जो पढ़ा है वो भी भूल जाता है, क्योंकि अंदर में डर है। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुद में निश्चय तो आत्मविश्वास मेरा जगा हुआ रहेगा। दूसरा एरिया है बाबा में निश्चय, चाहे कितनी भी बातें आवे बाबा मेरे साथ है, हम अकेले नहीं है। एक बार मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव सुनाती हूँ कि एक बार मैं कोई आइलैंड पर जा रही थी, टापू पर। तो कोई व्यक्ति मुझे सेंटर से एयरपोर्ट पर छोड़ के चला गया, तो मैं अपने टाइम पर प्लेन में बैठ गई, प्लेन उड़ा भी सही। या अबाउट 15 मिनट हम लोग थे एयर में, प्लेन में थे। तब अचानक क्या हुआ कि वो जो प्लेन का एक इंजन था उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, तो पूरा जो एयरक्राफ्ट था ऐसे ऐसे हिल रहा था। अंदर में जो लोग बैठे हुए थे सारे डर गए, और उसके उपरांत पायलट ने फिर अनाउंस भी कर दिया कि एक इंजन बरोबर काम नहीं करता है, इसीलिए प्लेन थोड़ा हिल रहा है। तो और ही पैसेंजर सारे डर गए। मेरे बाजू में एक बहन बैठी हुई थी, वो क्रिश्चियन धर्म की थी। या तो उसने जैसे सुना कि इंजन खराब है तो उसका तो वो ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया। फिर मेरे को कहती है कि मैं ब्रीद नहीं कर पा रही हूं, श्वास नहीं ले पा रही हूं, कहते मेरा ब्लड प्रेशर एकदम ऊंचा चला गया। फिर मैंने उसको बोला कि देखो, हम लोग धरती से 30,000 फीट ऊपर है। अब यहां पर कोई तुम्हारा घर वाला या फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर कोई बचाने आने वाला है नहीं, एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है भगवान। हाँ, तो वो तो क्रिश्चियन धर्म की थी। तो मैंने उसको बोला कि हैव फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट, जीसस के पर तुम विश्वास रखो, कोशिश करो अपने जीवन की कोई अच्छी बातों को याद करने का। फिर धीरे धीरे वो थोड़ी काम हुई, लेकिन अंदर में जो लोग बैठे हुए थे सबके अंदर में ये पायलट के प्रति एक नेगेटिविटी थी कि इसने ठीक से चेकिंग नहीं करवाया होगा, है इसको इंजीनियर ने ठीक रिपोर्ट नहीं लिया उसने, मतलब ऐसे ऐसे विचार सबके अंदर थे। तो आई कैन सी ना, मुझे दिखाई भी देता था, सुनाई भी दे रहा था। लेकिन मैंने भी बाबा से उस समय बातें की। मैंने कहा, बाबा आपको मुझे ऊपर में बुलाना हो हर्जा नहीं है, नीचे भी भेजना हो तो भी आई एम रेडी। या लेकिन मैंने अंदर में संकल्प किया कि मुझे उस पायलट को नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं देने हैं। मैं बाबा की याद में बैठ गई क्योंकि सबकी लाइफ उसी के हाथ में थी, या और तो कोई कुछ नहीं कर सकता, या तो फिर मैं योग में बैठ गई, बाबा को याद कर रही थी। फिर उसने अनाउंस किया कि अब मुझे इस एयरक्राफ्ट को अपनी डेस्टिनेशन पर तो मैं नहीं ले जा सकता, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, और जो नजदीक वाला एयरपोर्ट है वहां पर मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा। अब नजदीक वाला जो एयरपोर्ट था ना 15 मिनट की दूरी पर था, तो उसने ऊपर से बता दिया नीचे के लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग है। तो नीचे में वो सारे आ गए, फायर ब्रिगेड वाले, फिर एम्बुलेंस वाले है? और ऊपर बैठे बैठे लोग देख रहे थे कि सबकी बत्तियां बर रही थी, वो दिखाई देता था। तो वो सीन देख करके और ही लोग डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, या लेकिन मेरे को अंदर में विश्वास था कि कुछ भी होने वाला नहीं है, ये मेरे आगे एक परीक्षा है और मुझे इस परीक्षा में पास होना है। या तो मेरी स्थिति हलचल वाली नहीं रही, मतलब बाबा की अच्छी याद थी अंदर में। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पायलट ने उस प्लेन को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था, या तो लगभग हम लोग 10 फुट के करीब ऊपर में होंगे, फिर वो स्मूथ लैंडिंग नहीं कर पाया, उसने पूरा एयरक्राफ्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इंजन नहीं चल रहा था, उसका कोई दोष नहीं था, ही वॉज अ वेरी वेरी क्लेवर पायलट, तो उसने पूरा ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो उस समय फिर क्या हुआ कि कुछ कुछ भाई बहने जो बैठे हुए थे उनका सर वो सीलिंग से लग गया, कोई का इधर उधर टकराया, तो थोड़ी कुछ इंजरी हुई, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, परंतु मैं परफेक्टली फाइन थी, मेरे को कुछ नहीं हुआ था, या कहां पर भी कुछ भी चोट नहीं आई। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मेरा बाबा में विश्वास है तो बाबा हमारे जीवन में करेज दे देता है, हिम्मत दे देता है, और वो हिम्मत से हम सारे काम कर लेते हैं। तो बाबा ने मेरे को तीनों ही जगह पे 3 अनुभव करवाए, ऊपर आकाश में भी करवा दिया, जमीन पर भी करवाया और पानी में भी करवाया, तीनों टाइम जाते जाते बाबा ने बचा लिया। सबको लग रहा था कि अब जाने वाले हैं, लेकिन बाबा को सेवाएं करवानी होगी, या तो फिर से बाबा ने राइट जगह पे बिठा दिया। तो कहने का ये भाव है कि बाबा में भी मेरा पूरा निश्चय चाहिए। ऐसी सिचुएशन लाइफ डेथ की होती है ना, तब भी डाउट्स नहीं आना चाहिए कि पता नहीं यहाँ कहाँ मुझे बाबा ने भेज दिया, ये क्या हो गया, क्या होगा, कुछ नहीं। या उसको कहते हैं अचल अडोल निश्चय। या इतना फेथ हमारा परिवार में भी चाहिए तो हमें कॉपरेशन मिलेगा, सहयोग मिलेगा सभी का। तो ऐसे फियर को मुझे फेथ में बदल देना होगा तो मेरा जीवन हैप्पी बन जाएगा, या तब जाकर के आत्मा सुख का अनुभव कर पाएगी। या उससे आगे चलते हैं तो दूसरी बात है, हमें स्ट्रेस से भी फ्री रहना है, चिंताओं से फ्री रहना है, क्योंकि बाबा हमारा ऐसा चिंतामणि है, हमारी सब चिंताओं को बाबा हर लेता है। आज दुनिया में आप देखो स्ट्रेस इज अ कॉमन वर्ड है, छोटे छोटे बच्चे भी यूज करते हैं कि मेरे को टेंशन है, मेरे को स्ट्रेस है। एक बार क्या हुआ, मैं कहां पर थी, कोई देश में थी, तो एक छोटा सा बच्चा था, अबाउट 4 years old, 4 साल का बच्चा, ऐसे सिर पकड़ के बैठा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई आप ठीक हो, तो वो छोटा बच्चा मेरे को कहता है कि सिस्टर आई एम नो गुड, कहते मैं ठीक नहीं हूं। तो मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें, तो कहता है मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है और बहुत स्ट्रेस है। तो मैं तो हैरान हो गई, 4 साल के बच्चे को हेडेक है और स्ट्रेस है। तो मैंने कहा काय का तुम्हें हेडेक है, काय का स्ट्रेस है? तो कहता है कि मुझे स्कूल में बहुत सारा होमवर्क करना होता है, ट्यूशन, बहुत सारा पढ़ाई पढ़नी होती है, उस कारण मेरे को ये टेंशन और हेडेक है। तो मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा कि मैं जब उस एज की थी तब न तो मुझे हेडेक का ज्ञान था, न स्ट्रेस क्या होता है उसका कुछ पता था। लेकिन आज देखो, इट्स ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी हो गया है। आप चाहे कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, कोई भी एज ग्रुप के हो, सब जगह लोगों को स्ट्रेस है। भारत में तो इतना है लेकिन उतना बैड नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ जिन देशों में रह रहे हैं ना, वहां तो ये बहुत, इन लोगों को ये तकलीफें हैं। रात को बेचारे स्ट्रेस के कारण सो नहीं सकते हैं, सोने की गोलियां खानी पड़ती है तब जाके सो सकते हैं। और ब्राह्मणों को है कोई तकलीफ है? ब्राह्मण तो कहां पर भी सो सकते हैं आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। हमें तो और ही अलार्म बजाना, वो रखना पड़ता है ताकि राइट टाइम पे उठ जावे। दुनिया में लोग खटिया में नहीं सो सकते, हम तो आराम से बैठे बैठे भी सो लेते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति बैठे बैठे नहीं सो सकता। हम लोगों को बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। या तो ये बाबा कहते मुझे अपने आप को बार बार चेक करना पड़ेगा, कहां थोड़ा पर भी स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसे मुझे भगाना होगा। कैसे भगाएंगे? तो उसके लिए मुझे फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा ना, जिसको कहते ना मोल्ड होने की ताकत को धारण करना पड़ेगा। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसे लोग, उसी प्रकार अगर मैं अपने आप को मोल्ड कर लेती हूं तो न मेरे को स्ट्रेस होगा, न सामने वाले को स्ट्रेस होगा। मुझे दादी प्रकाशमणि की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी। दादी जब भी विदेश के टूर पर होती थी तो दादी समय को देख करके, परिस्थितियों को देख करके अपने को बदल देती थी। मैंने दादी के साथ बहुत टूर किया। एक बार हम लोग हांगकांग में थे, तो उस समय हांगकांग का सेंटर नया नया खुला हुआ था, उतनी सेंटर में फैसिलिटीज भी नहीं थी। या तो हम लोग आए उस सेंटर पे, किचन में मैं जाके देखा तो कोई इतनी चीजें भी नहीं थी किचन में। तो मैंने दादी को बोला, दादी क्या ब्रेकफास्ट बनाऊं? तो दादी किचन में आई, दो चार डिब्बे खोले, देखा कुछ इतना चीजें नहीं था, लेकिन वो सेवियां पड़ी हुई थी। चाइनीज लोग होते ना, वो नूडल्स बहुत खाते हैं, सेवियां पड़ी हुई थी। तो दादी ने मेरे को बोला कि ये सेवियां आप सब्जियों के साथ बना दो, वेजिटेबल सेवियां। तो फिर मैंने वो बनाया, फिर हम तीनों ने ब्रेकफास्ट किया। मोहिनी बहन भी थी, दादी भी थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग बिजी हो गए, अलग अलग प्रोग्राम्स थे अलग अलग जगहों पर। फिर लंच कहीं और था, सिंधी फैमिली थी, उनके वहां अपनी बहनें बना रही थी खाना। तो फिर रात को वही सेंटर वाली जगह पे आए। फिर दूसरे दिन मैंने दादी को पूछा, दादी क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? तो दादी कहती है, वही सेवियां बना दो, क्योंकि दादी ने देखा कुछ था ही नहीं। या तो ये दादी कंफर्टेबल फील कराती थी, है, जैसी सिचुएशन, जैसे लोग, जिस प्रकार की चीजें हैं उसी में ही एडजस्ट कर लेना है, है। तो कभी मेरे को भी टेंशन नहीं हुआ, न औरों को टेंशन हुआ, क्योंकि जब सेंटर की नई नई शुरुआत होती है तब उतनी सुख सुविधाओं की चीजें नहीं होती है। वो तो भारत में भी हम लोग देखते हैं, वही हाल विदेशों में भी होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत अच्छा गुण है। या तो ऐसा गुण अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो फिर कोई प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहेगा। फिर मेरा जीवन है हैप्पी बन के रहेगा। दूसरी बात, उससे आगे चलते हैं तो हमारे जीवन में नवीनता होना बहुत जरूरी है, न्यूनेस। आज सवेरे भी बाबा ने बोला ना, नवीनता। किस में नवीनता चाहिए? सबसे पहले मेरे संकल्पों में नवीनता चाहिए। एक भाई था, 60 साल का था, उसने अपने टी शर्ट पर एक बहुत शानदार वाक्य लिखा था, है कि मैं 16 साल का हूं, 44 इयर्स के अनुभव के साथ हूं। 16 साल का 44 साल के अनुभव के साथ हूं। अब देखो, कोई को खास करके भारत में हम बोलते हैं भाई 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब तो बूढ़े हो गए। बस वो संकल्प किए ना, सारे बुढ़ापे के लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। देखो दादी जानकी है क्या कहती थी, दादी वॉज अ 90 ईयर्स ओल्ड, लेकिन दादी कहती थी आई एम अ 19 ईयर ओल्ड गर्ल, है मैं 19 साल की हूं। है भले शरीर का एक प्रोसेस है, वो भले उम्र वाला होवे, लेकिन मन से मुझे बुढ़ा नहीं होना है, माइंड हमारा यूथफुल होना चाहिए। अगर मन को मैंने प्रोग्राम दे दिया ना, बूढ़े हो गए खत्म, फिर सारी निशानियां आ जाएगी। या तो फिजिकली मुझे एक्टिव रहना है, फिजिकली मुझे यूथफुल रहना है, तो मन में उसके लिए वो संकल्प नहीं अलाउ करने हैं। ये हो गई मन की नवीनता, संकल्पों की नवीनता। फिर वाणी में नवीनता, बाबा ने आज बोला, तीन बातें याद दिलाई है, हमारी वाणी में एक तो मधुरता चाहिए, या फिर संतुष्टता चाहिए, सरलता चाहिए। ये तीन गुण जब वाणी में धारण कर लो तो वो वाणी फिर अनेक आत्माओं को ऊंचा उठाएगी, आगे बढ़ाएगी। फिर उससे आगे चलते हैं तो फिर हमारे कर्म में भी नवीनता चाहिए। कर्म माना बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। दुनिया में तो आप देखो, अब लोग प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, सुन सुन के बेचारे थक गए हैं। तो सबसे पहले मुझे खुद को प्रीच करना है, तो बाबा का ज्ञान हमारे जीवन में होगा तो हम एग्जाम्पल सैंपल बन पाएंगे, तब देश दुनिया के आगे एक आदर्श को स्थापित कर पाएंगे, तब हमारे जीवन से अनेक आत्माओं को प्रेरणाएं मिलेगी। फिर कहते हमारे स्वभाव संस्कार में भी नवीनता चाहिए, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार। संबंध संपर्क में भी न्यूनेस चाहिए। बाबा ने क्या किया, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित किया, छोड़ा नहीं, लौकिक को अलौकिक बनाया है। तो मुझे भी लौकिक के साथ रहते हुए मेरेपन की फीलिंग्स नहीं रखनी है, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा के हैं। अगर बाबा के हैं तो बाबा विल लुक आफ्टर देम। अगर मेरे हैं तो बाबा भी कहेगा भाई तेरा है तो तू देख, या मेरा है तो मैं देखूंगा, या तो ये संबंधों में नवीनता हो गई जो बाबा ने करके हमें दिखाई। या फिर हमारे पुरुषार्थ में नवीनता, पुरुषार्थ हमारा ऐसा इजी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन वाला, दृढ़ता वाला चाहिए। कई बार हम संकल्प करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा दिन किया फिर ब्रेक हो गया, फिर किया फिर बंद हो गया, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो वो नवीनता उसमें आएगी तब सफलता मुझे मिलेगी। अनुभवों में भी नवीनता चाहिए, आज जो अनुभव किया कल मेरा दूसरा होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के अनुभव, तभी तो अनुभवी मूरत बनेंगे। अनुभव की अथॉरिटी आएगी तब तो जा करके हम लोगों को प्रेरणा दे सकेंगे। या फिर हमारी दृष्टि में भी नवीनता चाहिए, अलौकिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, कल्याणकारी दृष्टि, मर्सीफुल विजन। या तो ये दृष्टि में भी नवीनता, फिर हमारी वृत्ति में भी नवीनता, क्योंकि जो संकल्प हमारे अंदर में होंगे उसी के ही वो वाइब्रेशंस बनते हैं और वो वाइब्रेशंस वातावरण में फैलते हैं। जैसे आप सबने भी अनुभव किया है कि मधुबन में आते हैं तो देखो बाबा को भूलना मुश्किल होता है ना, अपने अपने स्थानों पर कितना मेहनत करना पड़ता है ना बाबा को याद करने की, लेकिन यहाँ बाबा भूलता ही नहीं है। या तो वो हो गई हमारे वृत्ति में भी नवीनता। तो ऐसी जब न्यूनेस हमारे जीवन में होती है तो अंदर में उमंग उत्साह रहेगा, और जब ऐसा उमंग उत्साह रहेगा तब संगम युग के इन मौजों के युग में हम मौज में रह सकेंगे। तभी तो दुनिया में कहावत है ना, हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी की खुराक एक कंप्लीट फूड है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो ऐसी खुशी की खुराक संगम युग में खाते रहे, सभी को खिलाते रहे, और ऐसे मौजों का अनुभव करते हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। ओम शांति।